गंगा
मैया की जय,
सांचे
दरबार की जय,
काशी विश्वनाथ
की जय,
हर हर
महादेव,
शंकर भगवान की
जय, सद्गुरुदेव भगवान की
जय,
शंकरा शंकरोत्ते शंकरा शंकरोत्ते। भगवान शंकर आपका हमारा कल्याण करे। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, शिव भक्तों के लिए बहुत कुछ है। भगवान शंकर का स्मरण, वंदन, पूजन, भजन, स्नान और दान परम कल्याणकारी है। भोलेनाथ आनंद की वर्षा करने वाले, मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अघान कर, जहां बस शंभु भवान, सो काशी से ये कसन। जीवन मुक्ति का आनंद लेना है तो काशी वास करो। सदा से मृत्यु के लिए छुटकारा पाना है मृत्यु से, काशी वास करो। जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिटाना है तो काशी वास करो। जैसे कश्मीर में केसर पैदा होती है, इसी तरह काशी में ज्ञान पैदा होता है। मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान, जैसे हीरे की खान होती है, सोने की खान होती है, तो काशी ज्ञान खान है। वहां ज्ञान प्रकट होता है। अघ हानि कर, अघ माने पाप की हानि, समस्त धुल जाते हैं। जहां बस शंभु भवान, भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ सदा जहां निवास करते हैं। काशी को भोलेनाथ छोड़ते नहीं, सो काशी से ये कसन। अभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भी चर्चा आएगी, सुनेंगे आप लोग। करुणा के समुद्र हैं, एक राजा थे, उनकी पत्नी कीर्तिमालिनी और वृषाभानु शिव भक्त थे। जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वो शंकर की ओर मुड़ते हैं, और जो भावक हृदय के होते हैं वो राम कृष्ण विष्णु की ओर जाते हैं। ज्ञान मिल जाना, ज्ञानान जिसे ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान को छोड़ करके मुक्ति तो मिलेगी नहीं। और अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति के चार भेद बताए गए, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजिज्य। ये चार प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, वैकुंठ लोक मिल जाए, ये पहली मुक्ति होती। प्रभु के समीप रहने को मिल जाए, ये दूसरी प्रकार की मुक्ति। प्रभु जैसा हमको शरीर मिल जाए, ये तीसरी मुक्ति। और हम प्रभु में समा के प्रभु ही बन जाएं, चौथी मुक्ति। भोलेनाथ चारों देते हैं, साधक की जैसी भावना होगी वो उसी रूप में जाएगी। बाकी सर्वश्रेष्ठ तो मुक्ति मानी गई है। यद्यपि वैष्णव लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भगवान में लीन हो गए तो फिर आनंद कहां रहा, लेकिन वो भोले लोग ये नहीं समझते हैं कि जो आनंद का केंद्र है उसमें हम जाएंगे तो क्या दुखी होंगे कि आनंद में रहेंगे। नहीं समझ में आ रही बात। भगवान आनंद के केंद्र हैं और हम उनमें लीन हो गए तो वहां दुखी होंगे क्या? आनंद में रहे। करोड़ों कहते हैं नहीं नहीं हमको तो साकार चाहिए। वो भी ठीक है, जो भावुक होते हैं वो सालोक सामीप्य सारूप्य चाहते हैं, और जिनकी बुद्धि प्रखर होती है वो मुक्ति चाहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाके जीव वापिस नहीं लौटते। एक व्यक्ति ने कन्फर्म टिकट कटा ली है, वो ट्रेन में बैठा सो लेट गया सो गया। दूसरा कभी टिकट भी नहीं कटा पाया था, ट्रेन में बैठना पड़ा, लेट हो गया था, तो सशंकित रहेगा कि नहीं रहेगा? टीसी कभी भी उतार सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो काशी का निवास करना कन्फर्म टिकट है। तुम्हारे काम कान में तारक मंत्र अंत में सुनाया जाएगा, अंदर प्रकाश होगा, जैसे बटन ऑन करते ही बल्ब में प्रकाश हो जाते और ऑफ करते बंद हो जाते। तो जब वो मंत्र यहां सुनाएंगे ना भगवान शंकर, अंदर प्रकाश हो जाए। ज्ञान भय जीव संसेना जाए, ज्ञान हुआ मुक्ति हो गई। अरे भाई तुम सुप देख रहे हो, कोई अप्रिय घटना घटी तो रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, लेकिन जैसे आंख खुली स्वप्न का दुख गया नहीं। इसी तरह है कि अभी संसार में तुम भटक रहे हो और जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, मोह रूपी रात्रि में संसार सो रहा है। मोह निशा सव सोव निहारा, मोह निशा सव सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा,
देखिए सपन अनेक प्रकारा।
अच्छा, स्वप्न में किसी को ऐसा भान हुआ कि हम स्वप्न देख रहे हैं? बोलो। और हम सो रहे हैं, ये भी भान नहीं होगा। स्वप्न देखते समय लगता है कि हम सो रहे हैं, पर हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? इसी तरह इस समय तुम अपने को सोच रहे हो कि हम जाग रहे हैं, लेकिन अभी सोए हो। यह सुन, वहां आंख खुलते ही स्वप्न का दृश्य गायब, यहां ज्ञान का प्रकाश होते ही संसार के दृश्य सब गायब।
सदगुरुदेव भगवान की,
लगे रहो, खुलेगी आंख तो खुले, दयामय प्रभु कृपा करेंगे। हम कहा करते हैं कि भाई तुम हर की पौड़ी नहाने गए, कार से कार बाहर खड़ी है, स्नान के बाद तुमको देने लगे, गरीबों की भीड़ लग गई, हमें अरे भाई खत्म हो गया, बस अब नहीं है, चल पड़े थे। एक भिखारी ऐसा है कि वो पीछे लग गया तुम्हारे, बाबूजी हमको नहीं मिला, बाबूजी हमको नहीं मिला। अरे भाई बोल तो दिया ना कि खत्म हो गया, अब नहीं, बाबूजी हमको नहीं, हम भूखे हैं, हम दुखी हैं। जब कार तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई आएगी। हाँ भाई इसको दे दो चले। इसी तरह जैसे वो कार तक पीछा नहीं छोड़ा, इसी तरह तो मरते मरते तक भगवान का भजन नहीं छोड़ोगे तो दयालु की दया होगी, वो तुमको सीधे वैकुंठ
देगी। हरे हर
महादेव।
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामी विमलां मत्यं। जीवन काल में भले कोई लाभ न हो, लेकिन जब प्राण निकलने लगे, प्राणात्यये भाग लेते, प्राणों का त्याग जो होता निकल जाए, ददामी विमलां मत्यं, निर्मध्य में थोड़ी देर दे देते, प्रकाश हुआ, संसार भूल गया, चले लगे रहो। चरई बेटी चरई बेटी चरई वत चरण वही मधुबिंदती। वेद भगवान कहते हैं बेटा चले चलो किनारा मिलेगा, जरूर मिलेगा, विश्वास रखो।
जय हो।
भजन करोगे तो थोड़ा परीक्षा भी हो सकती है, बात तो ठीक ही है। साल भर विद्यार्थी पढ़ता है, कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है तो बिना परीक्षा के प्रमोट हो जाएगा क्या? बिना परीक्षा के पास हो जाएगा? भगवान भी ले लेते। राजा रानी दोनों अपने परिवार प्रजा का पुत्र जैसा पालन करते हैं, और भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। क्या जाने? भगवान शंकर अंबा पार्वती वन में पहुंचे हैं, राजा भी वहां रानी के साथ गया हुआ है, परीक्षा ले ली, स्वयं ब्राह्मण बन गए, शिव पुराण में ही कथा है। अब पत्नी को नारी बना लिया और अपने नंदी को शेर बना दिया, और शेर ने हमला किया तो ब्राह्मण वेशधारी राजा ने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ, राजा सामने से हो आ गए, बाण मारना शुरू किया, कुछ असर नहीं हो रहा, और अंत में सिंह ने पत्नी को खा लिया। जब तुम एक महिला की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम प्रजा की रक्षा कैसे करोगे? तुम नामधारी राजा हो, वास्तव में नहीं होते। महाराज मैंने भरपूर कोशिश की है, पता नहीं क्या हुआ, बाण लगते ही नहीं। अरे मुझे पत्नी चाहिए, पत्नी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे तो यहां कहां कैसे मिलेगी, दूसरी शादी कर ना, यही चाहिए, कहां से दें हम? बोले तुम्हारी पत्नी है, वो हमें दे दो। महाराज आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पर पत्नी का संग जो है हजारों लाखों वर्ष के नरक दिला देता है, आप ऐसा कुकर्म करने जा रहे हैं? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं भगवान शंकर का उपासक हूं, मैं ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी भजन के द्वारा मिटा सकता हूं, उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए तुम्हें नहीं, दो नहीं तो मैं भी प्राण त्यागता हूं। पर तुम परेशान हो गया राजा, और निर्णय किया कि पत्नी दे देना चाहिए, नहीं तो पत्नी इसकी मर गई, ये भी मरेगा। पाप से तो पहले लोग बहुत डरते थे ना, पर पत्नी को देने के बाद मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को, मैं भी समाप्त होने के लिए, वो भी समाप्त होने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए, उन्होंने कहा
हरे हर।
वो नंदी ही शेर बन गया था, पार्वती ही ब्राह्मणी बनी थी, और मैं ही ब्राह्मण बना हुआ था। तुम्हारी धर्म निष्ठा से तो मैं प्रसन्न हो, बर मांगो, प्रेमा भक्ति दिव्य लोक की प्राप्ति उसने मांगा, जीवन सफल हो। एक आहुक नाम का भील था, जंगल का आदिवासी। पत्नी का नाम था आहुका। यही शिव पुराण में चर्चा है। भगवान शंकर के भक्त हैं। शाम का समय अंधेला होने जा रहा है। एक वृद्ध सन्यासी आ गए, बहुत वृद्ध से। भगत, जंगल का रास्ता है, मैं वृद्ध हूं, रात्रि विश्राम करूंगा तुम्हारे यहां, फिर जाऊंगा। आहुक ने कहा कि महाराज हम मजबूर हैं, आपको रख नहीं पाएंगे। क्यों? मेरी कुटिया में दो व्यक्ति के सोने की ही जगह है। इतनी छोटी कुटिया है कि दो व्यक्ति सो सकते हैं, और हम दो हैं, तो आपको कहां से लाएंगे। आहुका कहती, नहीं नहीं, अतिथि का सत्कार करना ये धर्म है। ये आए हैं, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूं। पति ने कहा, जंगल है, रात को भयानक जानवर आ जाते हैं, राक्षस आते हैं, मैं अंदर तुम बाहर, मुझे लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, तुम और सन्यासी अंदर और मैं बाहर, पति ने कहा। वृद्ध थे सन्यासी, और झोपड़ी ऐसी है जहां अंदर बाहर दिखता होता है। तुम दोनों अंदर सो जाओ, मैं बाहर खड़ा हो जाता। सन्यासी जी, पत्नी अंदर और आहुक शस्त्र लेके बाहर खड़ा। इतने में जानवरों ने हमला बोल दिया है। बड़े साहस से उसने टक्कर ली, पर अंत में जानवरों के द्वारा मारा गया। प्रातःकाल जब सन्यासी उठे, आहुका उठी, राम 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 राम, देवी मेरे कारण तुम्हारे पति का वियोग हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो सकता है तो मैं यहां न रहता, यहीं आगे चला जाता। अब तुम्हारा अकेला जीवन कैसे क्या होगा। आहुका ने कहा, महाराज मेरा पति पाप करके नहीं मरा है, अतिथि सत्कार करके मरा है, अतिथि की सेवा करके मर रहा है, और सीधा पति लोग जाएगा। तुम क्या करोगे अकेली यहां। मैं अभी चिता बनाती हूं, पति की लाश रख के बैठ जाऊंगी, मैं भी साथ चली जाऊंगी, क्या फर्क है। हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, और उसमें अगर पति के प्राण गए और हम सती हो जाते हैं तो हमारा सौभाग्य है। चिता बनाई, पति को रखा, आग लगा के आहुका बैठ। सन्यासी के रूप में भगवान शंकर भी आए थे। बोले, शंकर भगवान प्रकट हो गए। तुमने अपने धर्म का निर्वाह किया है, अतिथि सत्कार का महत्व समझा है। अगले जन्म में तुम्हारा पति राजा नल बनेगा, और तुम दमयंती बनोगी, मैं हंस बनूंगा, तुम दोनों का प्यार बढ़ाऊंगा, विवाह होगा, 10,000 वर्षों तक राज्य करोगे, और अंत में मेरे धाम चले आओगे। तुमने अपने धर्म का निर्वाह किया होगा। परीक्षा है, परीक्षाएं तो होती हैं, और कभी कभी ऐसी परीक्षाएं होती हैं कि देखने वाले के मन में संदेह भी हो जाता है। क्या जन्म वही दूसरे जन्म में राजा नल और दमयंती बने, जिनकी कथा आप लोग सुन चुके हैं, प्रसंगवत किसी दिन सुना देंगे। यदि आप इस जन्म में सुखी हैं तो पूर्व जन्म में कुछ पुण्य जरूर किया होगा, और दुखी हैं तो कोनो को पाप किया है, वो प्रारब्ध में आ गया है तुम्हारा। कारा ही पाप, पावा ही दुख, भय रुज शोक वियोग। पाप करोगे मन में हमेशा घबराहट भय सा बना रहे, कोई ना कोई रोग पकड़ लेगा तुम, प्रिय का वियोग हो जाएगा या मन में कोई टेंशन अपने आप पैदा हो जाए। करा ही पाप, पावा ही दुख, भय रुज, रुज माने रोग होता, शोक और वियोग। और धर्म आपने किया है, शास्त्र कहते हैं तुम भजन या धर्म करोगे तो वो तुम्हारे हाथ में पैसा रखने नहीं आएगा, धर्म इनडायरेक्ट तुम्हें लाभ करा देगा, इनडायरेक्ट सुख भिजवा देगा तुम्हारे। तुम पाप करोगे तो पाप डंडा मारने नहीं आएगा तुम्हारा, तुम्हारे जीवन को दुखी बना देगा, भय रुज शोक वियोग करा देगा। अगर पाप सामने आके मारने लगे तो पाप करेगा कौन, और पुण्य करते तत्काल ही सुख मिलने लगे तो फिर दुनिया व्यापार क्या करेगी, यही व्यापार चलेगा, सुबह दिया शाम को मिल गया। पाप करने वाले पहले सुखी नजर आते हैं, बाद में विनष्ट होते हैं, और जो भजन करने वाले हैं वो पहले दुखी नजर आते हैं, उसके बाद अगर भजन नहीं छोड़ा तो फिर माला माल हो। अच्छा, समझ में आया? पहले जन्म किया जो विदर्भ देश के राजा थे सत्यरथ, भगवान शंकर के भक्त हैं, काफी बड़ी स्टेट है उनकी। आज प्रदोष है ना, प्रदोष के समय सायंकाल सूर्यास्त के समय पूजन का बड़ा महत्व होता है। आज तो अभिषेक भी आप लोगों ने किया होगा, और लोग बहुत कुछ करते हैं। आज शुभ दिन में किया गया शुभ कर्म बहुत फल देता। महाराज पूजन करने बैठे थे प्रदोष, एकदम बाहर शोर सुनाई पड़ा उनको, अधूरी पूजा छोड़ के वो बाहर आए। एक सामंत को पकड़ के लाए हैं सोल्जर, इसने ये गलती की है, इसका सिर काट दो। राजा ने उसका सिर कटा दिया, अब पूजा अधूरी की अधूरी रह गई, खाती के सो गए। ये पांड्य देश के राजा थे पहले, बाद में फिर वही विदर्भ देश के राजा बने। जब विदर्भ देश के राजा बने तो जिसने जिसे पहले मारा था ना, वो भी दूसरे देश का राजा बन के इन पर चढ़ाई करता है, भयानक युद्ध होता है, और युद्ध में विदर्भ देश के राजा सत्यरथ मारे गए। पत्नी सगर्भा है, गर्भवती है, दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, राज्य का छिन जाना और पति का समाप्त हो जाना वज्राघात है, घबरा गई है, पिछले दरवाजे से वो निकल के भागी है। रात का समय, क्या विषम परिस्थिति होगी सोच, कहां राज रानी है, और एक दिन में कैसे पासा पलट गया। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं अपना सुख देख करके ईश्वर को भूल नहीं जाना, आने वाला कल हमारा कैसा होगा किसी को नहीं मालूम। अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं, जीवन में कब कहां कैसी घटना घट जाए कुछ पता नहीं लगता बाबा, कुछ पता नहीं लगता। अब कल्पना करें जरा आप लोग, रानी सगर्भा है, गर्भवती है, दिन पूरे हो रहे हैं, राज छिन गया है, पति की मृत्यु हो चुकी है, शत्रु पीछे लग सकते हैं, रास्ते में जंगल है, राक्षस आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, पर वो सबका विचार छोड़ के बस भागती जा रही थी। पीछे भी मुड़ के देखती है, यहां वहां भी देखती है, कोई आ तो नहीं रहा। रात भर भागी है। प्रभात काल एक तालाब के किनारे एक सुंदर सा वृक्ष नजर आया, थकी थकाई थी, बैठ गई। बैठने की देर थी, पैन शुरू हो गया और थोड़ी देर में बालक ने जन्म ले दी। घरवाहट भी थी ना बहुत ज्यादा अंदर, रात भर दौड़ी भी है, पाव भागी है। अब बच्चा हुआ ही था और लगी जोर की प्यास, छटपट आ गई। तालाब सामने है, बच्चे का नाड़ा भी नहीं छिना, भी कटा। सरकती सरकती गई कि पानी पी लो। जैसे पैर डाला पानी उड़ा, मगर ने आगे पकड़ा। देखो जब सुख आता है तो चारों तरफ से, और विपत्ति जब आती है वो भी चारों तरफ से आती है। एक सेठ अपनी नौका में करोड़ रुपए का माल डाल के विदेश भेज रहा है। उस समय के करोड़ आज के अरबों से ज्यादा होते हैं, अरबों। और अपने किसी परिचित से कह रहा, मैं करोड़पति हूं, करोड़पति मैंने भेजा हुआ। 10 मिनट के बाद पता लगा कि नौका समुद्र में डूब, अब करोड़पति से कहा निकल गया, अब क्या रह गया,
रोड़पति,
फुटपाथ में सोने वाला हो गया। कह रहे करोड़पति कहा निकल गया,
रोड़पति
हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, इस शरीर में कैसी बीमारी लग सकती है, धन संपत्ति का अपहरण कैसे हो सकता है, जवान बेटे पत्नी या बहू की मृत्यु, कुछ पता नहीं है। चल रहे हैं, आशा की डोर में बंधे हुए चल रहे। वहां राजा मारा गया, यहां पत्नी का ही, अभी नाड़ा कटा नहीं है, बच्चा रो रहा बिलख रहा। इतने एक ब्राह्मणी आ गई, उसके गोद में साल भर का बच्चा है, गरीबी नहीं है, घर घर भिक्षा मांग के गुजारा करती। देखा बालक को पड़े हुए रोते बिलखते, अभी तो नाड़ा भी नहीं कटा इसका, शरीर देखने से लगता है बड़े घर का बच्चा है ये, लेकिन इसके अभिभावक माता पिता नौकर चाकर कोई भी यहां नहीं है, जंगल है, जानवर आके खा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है, मैं उठा लूं और कोई इसके अपने आ जाए मुझे मारने पीटने लगे, हमारा बेटा क्यों उठा लिया, समझ में आ रहा नहीं उठाती हूं, चली जाती हूं, जानवर खा गए तो पाप मुझे लगेगा। रास्ते में तड़फते हुए व्यक्ति को देखकर भी आगे गए तो, और वो मारा गया, उसका कुछ पाप तुम्हें मिला। तो जा भी नहीं सकती, उठा भी नहीं सकती। भगवान शंकर सन्यासी के रूप में आ गए। देवी कैसे, क्या सोच रहे हो, कैसे खड़ी हो रही? महाराज बच्चे को देखिए ना, कभी नाड़ा भी नहीं कटा, अंगुलियां लंबी लंबी हैं, नेट बड़े बड़े हैं, लगता है बड़े घर का बच्चा है, लेकिन यहां कोई नजर नहीं आ रहा। आपको जानकारी है ये कौन है? हाँ मैं तो 3 जनों का हाल बता सकता हूं। कौन है ये? ये विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। राजा का पुत्र यहां कैसे? सारी कहानी भगवान ने सुना था। क्या आप ये बता सकते हैं कि पूर्व जन्म में इन्होंने कौन से गलत काम किए हुए हैं? ये भी आप बता सकते हैं कि मेरी गोद में बच्चा ही गरीब क्यों घर में पैदा क्यों हुआ है, ये बड़े घर में पैदा क्यों हुआ, फिर इतना दुखी क्यों है? मैं सब सुना सकता हूं, तुम ध्यान से सुनो। इसके पिता ने पहले जन्म में एक सामंत राजा का सिर कटाया था, दूसरे जन्म में वही दूसरा राजा बन के इसका सिर। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है, दो है। चार वेद छह शास्त्र में
बात मिली है
दो है। दुख दिए दुख होता है और सुख दिए
सुख होए।
सब शास्त्रों का सार है। हम किसी को धोखा दे रहे हैं माने धोखा खाने की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी को अपमानित कर रहे हैं माने अपमानित होने की हम तैयारी कर रहे हैं, किसी का धन हम चुरा रहे हैं तो हमारा भी लूटने वाला कोई तैयार हो रहा होता है। हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही अगले समय हमको मिलने वाला है। ये पत्नी राजा की, इसकी मृत्यु हो गई, क्या कारण? इसने अपनी सौत को जहर पिला के मरवाया था। सौत समझते हैं ना, सौकन बोलते हैं पंजाबी में, सौत मरवा दिया। वही मगर बन के आई और मिले। ये राजकुमार की क्या स्थिति है? ये भी पहले राजकुमार ही था महाराज, प्रदोष काल में पूजन छोड़ के ये भोजन करके सो गया था, अधूरी पूजा छोड़, इसलिए ये ऐसा बना हुआ है। ये मेरी गोद में जो बेटा है इसके बारे आप कुछ बता सकेंगे? हाँ बता सकते। क्या है? ये भी पहले जन्म का ब्राह्मण बालक ही है, इसने जीवन भर दान लिया ही है, दिया कभी नहीं। अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयांति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पाप। जो धनवान होकर के दान नहीं करते और जो गरीब होकर के भजन नहीं करते, ये जन्म जन्म गरीब होकर दुख रहते रहते। गरीबी है तो दान जरूरी नहीं है, फिर तो नाम है। जितना ज्यादा जप सकते हो जप लो, कुछ सेवा कर सकते हो शरीर से तो वो भी कर। हाँ, जिनके पास धन है उन्हें दान करना चाहिए। तुम्हारे इस बेटे ने बीते जन्म में केवल दान लिया है, कभी दिया नहीं आज, इसलिए दरिद्र होकर के पैदा हो गए। क्या इनका भाग्य बदल सकता है? जरूर बदल सकता है देवी। इस बच्चे को भी तुम उठा लो, तुम्हारा तो एक है ही ना, अपने दो समझ। उनका जनेऊ संस्कार कराने के बाद शिवार्चन कराना है, शिव का पूजन कराना है, शिव का नाम जप। शिव का पुजारी जल्दी गरीब नहीं होता, ये बिल्कुल निश्चित बात। और जो शिव से द्रोह करते हैं वो सदा सुखी नहीं रहते। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे, इच्छित वस्तु की प्राप्ति चाहिए तो शिव का अर्चन करते रहें। और कुछ भी नहीं बने पूजा पाठ तो शिव शिव तो कर ही सकते हो। हम तो कृष्ण को चाहते हैं तो शिव को जपें फिर क्या होगा? बाबा ये भंडारी है, भंडारी का मतलब होता है जिसके कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हैं। अब आने वाला जो मांगता है भंडारी उठा के दे देता है, तो ये भोला भंडारी हैं। इनके भंडार में भक्ति ज्ञान वैराग राम कृष्ण विष्णु सब के अधिकार हैं। तुम जिसके भक्त हो इनकी पूजा करते हो, जब जाओगे तो उन्हीं के पास तुमको भेज देंगे।
हरे हरे।
उदाहरण हम दिया करते हैं कि लेटर बॉक्स तो मोहल्ले में एक ही होता है, लेटर अनेक डाले जाते हैं नहीं, पर जिसका जो एड्रेस होगा
वहां पहुंच जाएगा,
लेटर वहीं जाएगा कि नहीं। इसी तरह तुम्हारी भावना जैसी होगी उसके अनुसार भोलेनाथ तुमको
वहीं भेज देंगे,
भेज देंगे। संशय नहीं करना कि हम तो उनके भक्त हैं, इनका भजन कैसे करें। इनके होर भजन कर रहे हो तो सौभाग्य की बात है, पर दूसरे को पाना चाहते हो फिर भी इनका भजन कर लोगे तो वहीं पहुंचा देंगे, ये विश्वास लेके चलो। अच्छा, ब्राह्मणी ने जाकर के पालन पोषण किया है, 7 वर्ष की अवस्था के बाद जनेऊ संस्कार किया। आजकल जनेऊ पहनना छोड़ दिया लोगों ने, इन भोले लोगों को पता ही नहीं कि जनेऊ में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। जनेऊ के 3 धागे हैं और एक एक धागे में 3-3 धागे हैं और उनमें 27 देवता निवास करते हैं। अभिमंत्रित करके पूजन करके विधिवत जनेऊ ग्रहण किया जाए तो इतने देवता आपके शरीर से लपटे हुए होते हैं, ब्रह्म वर्चस्व तेज की प्राप्ति होती, बढ़ते हैं। आज सरदार भाइयों को देखो, उनके लिए कृपाण का आदेश मिला हुआ है, कपड़ों के ऊपर कृपाण टांग के बड़े शान से चलते हैं और जनेऊ कपड़ों के अंदर है फिर भी धारण करने में शर्म लग रही है, ये दुखद बात है कि नहीं बोलो। अंदर कपड़ों के अंदर जनेऊ रहना क्या पता लगना, कहते महाराज कान में करना होगा, गले में डाल लो, गले में रहेगा तो शुद्ध नहीं होगा, पर जनेऊ कंपलसरी है सवर्णों के लिए। आजकल कई संप्रदाय से चल गए हैं कि सबको पहनाते रहते और सबसे यज्ञादि कराते रहते, गलत है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहिजम पुरस्तात् आयुष्यमगरम प्रतिमम च सुवरम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजः। आत्मबल की वृद्धि होती है, शरीर पर तेज आता है, जनेऊ कंपलसरी है, जरूरी है। ब्राह्मणी ने जनेऊ कराया, शिवार्चन और शिव का पूजन विधि विधान सिखा दिया, दोनों बैठ करके भगवान शंकर का खूब भजन करते हैं, पूजन करते हैं। हर हर महादेव
Bye।
ब्राह्मण बालक नदी किनारे पहुंचा उसने रत्नों से भरा हुआ भांडा मिल गया, असरफियों से भरा हुआ पात्र मिल गया। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है हमारा, ले आया है गरीबी दूर हो गई। एक दिन वो राजकुमार गया हुआ है, एक गंधर्व कन्या आई है, सौंदर्य देखकर मोहित हुई है। पिता ने बेटी की शादी कर दी, आधा राज दे। राजकुमार ने सेना तैयार की है और विदर्भ देश में जाके शत्रुओं से युद्ध किया है। अब पिता का छीना हुआ जो राज्य था ठीक प्राप्त किया। तीन सिंहासने बनती हैं, क्या समझो? राजा बना, दोनों बेटों ने यावत जीवन भूत भवन विश्वनाथ की आराधना की है और शरीर छोड़ने के बाद सीधे परम धाम पधारे हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजे
हरे हरे
महादेव।
वो ब्राह्मणी राजमाता बनकर के बैठते, किया हुआ परोपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। परोपकाराय सताम विभूतया, बड़े लोगों का जीवन परोपकार के लिए होता है। केवल परिवार के लिए जीवन तो पशुओं का जीवन है, क्योंकि पशु भी अपने परिवार के लिए व्यवस्था में लगे रहते हैं। पर ही तपस जिन के मन माही, इन कहां जग दुर्लभ कछु नाही, पर उपकार बचन मन काया, शांत सहज स्वभाव खगराया, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। परोपकार से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर किया है, शुद्धो सहादो सरदार उल्लास नगर बंबई के पास है, क्या कहीं
जी गुरु,
11,000 रुपया उन्होंने भेजा है। पुष्पा देवी गोयल एवं दिनेश परणिया लातूर, ये भी महाराष्ट्र में, 11,000 इन्होंने भेजा हुआ है। मनोज राम असर अररा बिहार 1100, विजय कुमार हिसार 2100, श्याम लाल सादरा, श्याम तायल सादरा दिल्ली 2100, प्रवीण अग्रवाल गुड़गांव 7200, रमन कुमार पराशर, रमन पराशर जी तो यहां भी बैठे हुए हैं, सर आए थे दिल्ली वाले हैं 1100, मोगेश्वर छिंदवाड़ा मोरेश्वर मध्य प्रदेश 1100, रमेश हैदराबाद 1000। इस तरह लोगों ने दिया। एक प्रश्न आया, शिव की आधी परिक्रमा क्यों? उत्तर यही है कि जो जिलहरी होती है वो पार्वती जी का स्वरूप कहलाता है। पिंडी जो है शंकर का रूप है और जिलहरी
पार्वती का।
तो जब हम उस तरफ परिक्रमा करेंगे तो उनको लांघना पड़ेगा क्या? नहीं समझ में आ गई बात? नहीं आई तो उनको लांघना ना पड़े, इसलिए शिवस्य अर्ध परिक्रमा। हाँ ये भी लिखा है, कि अगर जलहरी अंदर हो और ऊपर से छुपी हुई हो, टाइल वगैरह विषय हो सको, फिर परिक्रमा कर सकते, फिर कोई दोष नहीं। अगर ऊपर है तो फिर आधी पर। कई ऐसे होते हैं ना जलहरी जो नीचे दब जाती है, फिर उसमें दोष नहीं होता। इसलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की चर्चा अब करनी है। कथाएं तो बहुत हैं अभी। भगवान अनंत हैं तो उनका चरित्र भी तो अनंत है, तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की चर्चा जरूरी है, हो जाए कर लेते हैं। एक भजन सुना दो भाई कोई। प्रमोद तुम सुना दो आज।
भोले शंकर भगवान की हो, डमरू बजा दे भोले आज, सभी नचा दे भोले ओ, नाम वाली मस्ती भगता प्याले आज, सभी पिला दे भोले ना,
वाला मेला लग गया,
हर सब नचन बोलिया, ਵਜਾ ਦੇ ਭੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇ ਭੋਲਿਆ, ਡਮਰੂ ਬਜਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ,
ਡਮਰੂ ਬਜਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ,
शिवरात्रि का पावन पर्व देश और विदेश में भगवान शंकर की आराधना चल रही। जैसा आपने सुना कि शिव का भक्त जल्दी दुखी नहीं होता, इसलिए शिवार्चन करते रहना। शिव शिव ही जपते रहो, नमः शिवाय जपते रहो, अथवा नमः शिवाय शुभम शुभम कुरुकु शिवाय नमः ओम जनयुगधारी, इसको जप सकते हैं। तो ओंकार छोड़ के दूसरे लोग भी जप सकते हैं। अच्छा, परम कल्याणकारी मंत्र है। 1 करोड़ जप लिया जाए, 1.25 करोड़ जप लिया जाए, समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगते हैं। आज व्यक्ति सात्विक जीवन बिताता हुआ भजन नहीं कर पा रहा, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। अगर जीवन सात्विक हो, खान पान सादा हो, तो निश्चित सफलता मिलती है। अष्टो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहले हैं सौराष्ट्र सोमनाथंच गुजरात। सौराष्ट्र समुद्र का तट है, दिव्य विग्रह है भगवान का। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी। उनमें सबसे ज्यादा आकर्षक रोहिणी थी। चंद्रदेव का आकर्षण रोहिणी से ज्यादा हो गया। दूसरी बहनों ने देखा, उन्होंने पिता से आके कहा, आपके दामाद का व्यवहार विषम है, सम नहीं है, उन्हें समझाकर सही रास्ते ले आए। दक्ष ने बुलाया और कहा कि देखो, या तो इतनी शादियां करानी नहीं थी, और करा ली तो सबके साथ व्यवहार समान होना चाहिए। पिताजी अब आगे शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है, जाओ। कुछ दिनों के बाद फिर वही स्थिति, दोबारा बेटियों ने आके शिकायत की है। दक्ष को क्रोध आ गया, दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाए। चंद्र जो ऊपर देखते हैं आपको, पूर्णिमा को पूरे होते हैं, 16 कलाएं हैं चंद्रमा में, सब क्षीण हो गए। अब राहु पिंड जैसे हो गए बिल्कुल। देवता भी दुखी हुए, चंद्र तो दुखी हुए ही, देवता भी दुखी हो गए। सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, फिर सब मिलके आए और कहा गया कि अगर तुम अपने रोग की निवृत्ति चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण ले लो। सर्वे रोगा प्रणश्यन्ते, तुम्हारे रोग शोक सब मिटेंगे। सोमनाथ में अभी भी वो तालाब है या नहीं, पहले तो था, उसमें 6 महीने स्नान किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग निवृत्त हो जाता है। उसी में स्नान करते हैं चंद्रदेव और भगवान शंकर का मंत्र जपते रहते हैं। मृत्युंजय 6 महीना एक ही जगह बैठ कर कठिन तप किया, भोलेनाथ प्रकट हुए, चरणों में प्रार्थना की और उसके बाद रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना। भगवान शंकर ने कहा दिया हुआ श्राप पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत मिटा देते। और वो यही, एक पक्ष में एक एक कला बढ़ेगी तुम्हारी और दूसरे पक्ष में एक एक कला। पूर्णमासी को तुम पूरे हो गए और अमावस्या को सुनना लो। अमावस्या को चांद नहीं दिखता, पूर्णिमा को दिखता है। फिर सब देवताओं ने प्रार्थना की है कि यहीं आप ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें और कलयुगी जीवों का कल्याण होता रहे। ये तो करुणा सागर हैं, भोले भाले हैं, जैसी प्रार्थना लोग कर देते हैं मान लेते हैं। इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सोमनाथ, चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है, जैसे इतवार सोमवार वो है असल में चंद्रवार, लेकिन उसको हम सोम, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए सोम के नाम से ही सौराष्ट्र में भगवान शंकर निवास। 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्यादा तो अच्छा है कि पहले सबका दर्शन कर जाओ, नहीं जा सके तो 12 नाम याद कर लो। क्या जानते, आजकल तो टीवी में भी दिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर लो। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति, 7 जन्म के पाप एक बार का स्मरण करने से निवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिका नाम अम्बा पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। गणेश विवाह के समय आपने सुना ही लिया है कि कार्तिकेय जी वहां जाके बस गए थे, मैं शादी नहीं कराऊंगा, बस आपकी ज्योति मुझे प्राप्त होती रहे, मैं अपना जीवन ऐसे। कल्प वेद से उनकी साथी देवसेना के साथ हुई है, लेकिन एक कल्प में यही स्थिति है, कुमारत्व उनका शिव कुमार। पूर्णिमा को परम्बा भगवती जाती हैं दर्शन के लिए और अमावस्या को भोलेनाथ भी वहां निवास करते। बहुत स्वरम जगह है, कृष्णावेणी नदी के किनारे, बहुत सुंदर स्थल है। हैदराबाद से 250-250 किलोमीटर ऊपर है। तो श्री शैले मल्लिकार्जुन कार्तिकेय भगवान वहां है ज्योतिर्लिंग के रूप में। तीसरे हैं
उज्जैन
महाकालेश्वर, तीसरे हैं उज्जैन महाकाल। कथा थोड़ी लंबी है, संक्षेप में कहेंगे। एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण उज्जैन में रहते हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं। प्रातःकाल से सायंकाल तक पार्थिव बनाते हैं, पूजन करते हैं, नाम जपते हैं, ज्यादा कोई काम भी नहीं करते, वही काम करते रहते। जैसा हमने अनेक बार आपसे कहा कि जिनका बैकग्राउंड तैयार नहीं है वो लोग एकांत में रह नहीं सकते, क्या करेंगे बैठे बैठे। और जिन्होंने अपना बैकग्राउंड तैयार कर लिया है, इतने घंटे जप करना है, इतने घंटे पूजन करना है, इतने घंटे ध्यान करना है, इतनी कथा सुननी, उनके दिन आराम से निकल जाया करते। वेद प्रिय ब्राह्मण है, सुबह से शाम तक पूजन पाठ जप ध्यान में लगे रहे, वो समाप्त हुए। उनके चार पुत्र थे, वो भी पिता का ही अनुसरण करते हैं, जैसे पिताजी पूजन करते थे वो भी करने लगे। एक दूषण नाम का दैत्य था, विशाल सेना लेके उज्जैन पुरुष ने हमला किया हुआ, क्योंकि सेना उसकी विशाल थी, नगरवासी लड़ नहीं सकेंगे, खास खास लोग भागे हुए उन चारों ब्राह्मणों के पास आ गए। आपके पिता भी शंकर भक्त थे, आप भी शंकर भक्त हैं, इस समय नगर पर संकट आया है, आप चाहे प्रार्थना करके दूर कर सकते हैं। चारों ब्राह्मणों ने कहा आप चिंता नहीं करो, भोलेनाथ कृपा करें। इतने और दूषण वहीं पहुंच गया, ब्राह्मणों का भया भयानक शरीर, इसका हाथ में तलवार है, क्रोध में भरा हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अजी हम शिवार्चन कर रहे हैं, शिव का पूजन। कहाँ है शिव? तो दिखा दिए सब मिट्टी में, पार्थिव मिट्टी के पार्थिव कहलाते हैं ना, वही देखो। जोर से हंसा, लोगों को मूर्ख बना रखा है तुम लोगों ने, अपना पेट पालने के लिए बहाना ले लिया है, मिट्टी में शंकर आ गए तुम्हारे, शंकर को बुलाओ, मैं भी देखूं तुम्हारा शंकर कैसा है, नहीं तो आज तुमको समाप्त कर दूंगा। जैसे तलवार उठाई और चारों ने हाथ जोड़ के, द्रौपदी ने जैसे भगवान को पुकारा था, इसी तरह चारों ने आर्त भाव से जैसे भोलेनाथ का विस्फोट हुआ और भगवान शंकर प्रकट हो गए।
हर हर
महादेव।
वो कह रहा था मैं तुम्हारा काल आया हूं मार दूंगा, तो भगवान ने प्रकट होकर कहा मैं महाकाल हूं तेरा विनाश करने के लिए। अच्छा, भगवान भूत भवन विश्वनाथ प्रकट हुए, मार दिया। आज भी गड्ढे में इस जगह है महाकालेश्वर में, तो चार छह सीढ़ियां उतर के तो विशाल शिवपिंडी है। इससे जुड़ी हुई एक कथा और है, एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए, वो भी उज्जैन के राजा हैं, आसपास के प्रजा के सब। चंद्रसेन की मित्रता भगवान शंकर के गणे मणिभद्र उनके साथ हो गई। मणिभद्र ने मित्रता के नाते एक मणि चंद्रसेन को प्रदान किया, क्या राजा उसको मणि को गले में बांध के सिंहासन पर बैठते हैं। अनेक बार आप सुन चुके हैं, सनातन परंपरा है, चार चीजें पर्दे में रहें तो ही सुरक्षित होती हैं, भोजन भजन खजाना नारी, ये चारों पर्दे के
अधिकारी।
ये पर्दे में रहे तो ठीक, अब पर्दा हटेगा अनेकों की दृष्टि पड़ेगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मणि मिली है तो गले में बांध के सिंहासन पर बैठते हैं, देख रहे हैं प्रकाश भी निकल रहा था। आसपास के राजाओं को जब ये जानकारी हुई, अनेक राजाओं ने आपस में मीटिंग की और सबने मिलकर हमला बोल दिया। अब तो फिर नगरवासी घबरा गए, चंद्रसेन ने सुना वो भी घबरा गए क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके, तो भगवान शंकर की शरण में चले गए। एक लोटा जल चढ़ा दो तो ही पूजा है, और 64 प्रकार की वस्तुएं चढ़ा वो भी पूजा है, 16 प्रकार की, 64 प्रकार, 128 प्रकार पूजन अपने शास्त्रों से, क्योंकि राजा है इसलिए विस्तार से पूजन करा। उसी समय एक ग्वालन अपने बेटे श्रीकर, उसका नाम है बेटे का, लेके दर्शन करने आई, दर्शन किया। श्रीकर ने देखा शंकर जी के चारों तरफ सामान, पूजन, आरती, वंदन, बच्चों का स्वभाव होता जो देखते वही करते हैं, वो ले गई। मां तो घर में काम में लग गई, उसने 8 ईंटों का मंदिर बनाया, एक पत्थर लाके रख लिया, पत्थर पुष्प वहीं जो लगे थे चढ़ा दिया और बैठ के भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते उसकी समाधि सिद्ध हो गई। मां ने रोटी तैयार की है, प्राचीन काल में माताएं पति और पुत्रों को, अतिथियों को खिला के तब खाती थी, क्या इनको ज्यादा भूख नहीं लगती थी, कलयुग में ज्यादा भूख लगने लगी है, ये बीमारी हो गई। अबला कच भूषण भूर क्षुधा, धनहीन सुखी ममता बहुधा। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में स्त्रियों का श्रृंगार केवल बाल संभालना रह जाएगा, कई तरह से काट पीट करके बाकी सब छुट। भूरी क्षुधा, भूख बहुत लगेगी कलयुग में, वासना भी बहुत हो जाएगी। पहले आप सुनते हैं कि एक एक राजा के या व्यक्ति के 10-10, 20-20, 50-50 रानियां होती थी, बहुत थी, क्यों? इसलिए कि देवियों में से वासना नहीं थी, एकाध संतान हो गई, दो हो गए छुट्टी। कलयुग में स्त्रियों में वासना ज्यादा हो गई। शास्त्रों में तो लिखा कि पुरुष से स्त्री में 8 गुना ज्यादा काम होता, कामाश्चाष्ट गुणा स्मरता। ये तो मर्यादा है कि वो मर्यादा में बंधी हुई है, वही तो वेश्या जैसे उसका रोज कितने आते हैं। धर्म की मर्यादा में ही स्त्री अपने को संयम में रखती है, और नहीं तो वासना बहुत होती है। अस्तु, तो ग्वालन ने बनाया है भोजन, निकली बाहर, श्रीकार बेटा श्रीकार, बेटे को आवाज दे रहे, बेटा तो समाधि है, पास में पहुंची, हिलाया भी उसे, सोचा सो गया होगा। वो जो पूजन पाठ का था ना, सब उठा के ग्वालन में फेंक दिया, उसके समझ में खिलौना खेलते खेलते सो गया होगा ना, और जाके स्वयं सो गई। बेटा उठेगा खाएगा तब मैं कहूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर को एक बटरोई मिली हुई थी महाभारत, जब 12 वर्ष का वनवास था उनका, उसका यही नियम था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेंगे, 1,00,000 व्यक्ति आ जाएं, उस बटरोई से सबको भोजन निकले। द्रौपदी भोजन कर लेगी उस दिन कुछ नहीं निकलेगी, फिर दूसरे दिन निकले। अच्छा, द्रौपदी बहुत प्रसन्न थी, चलो इसी बहाने व्रत हो जाएगा, सारा दिन लोहा खिलाती रहती। हमने आपसे कहा ना, पहले वासना और भूख दोनों कम थी, अब दोनों बढ़ गई बहुत। तो जाके लेट गई, उठेगा खाएगा तो मैं खा लूंगी। वहां उसकी आंख खुली, उसने देखा कि ना वंदर ही तो वाला न भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरे भगवान कौन ले गया हे भोलेनाथ। ऐसी करोड़ों उसने पुकार के कि महाराज भगवान शंकर मंदिर के सहित प्रकट हो गए।
हर हर
महादेव,
मंदिर के सहित प्रकट, स्फटिक में शिवलिंग, क्या बात। आके मां को जगाया, मां मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे भोलेनाथ। मां ने आके देखा तो बहुत चक्की सी रह गई, इतना सुंदर मंदिर और उसमें स्फटिक मणि या डायमंड के शंकर भी रखे हुए। फिर तो चरणों में लौट गई, भोलेनाथ मुझे पता नहीं था कि आप कितने करुणामय हैं और बेटे ने कैसे पुकार किया, मुझे क्षमा करेंगे। CID घूम रहे थे उनके, जो दूसरे राजे चारों तरफ घेरे थे, उनके गुप्तचर, उन्होंने देखा, राजाओं को सुनाया, एक बालक ने मंदिर सहित भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। राजाओं ने शस्त्र छोड़ दिए, जहां एक बालक के अंदर इतना बल है, शक्ति है, प्रभाव है, तो बड़ों की क्या शक्ति नहीं। हम नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। चंद्रसेन को पता लगा कि आपके राज्य में, आपके नगर में एक बालक ने भगवान शंकर का मंदिर प्रकट किया है, भगवान शंकर वो भी आपके चरणों में गिर गया है। युद्ध बंद, लड़ाई का विचार छोड़ दिया, राजाओं ने आके चरणों में गिरते हैं श्री कर। भगवान मिल जाए सारे गुण आ जाएंगे ना आप में। यशास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वई गुण तत्र समासते सुरा। यशास्ति भक्त कहते हैं, हनुमान जी भी प्रकट हो गए, जितने ग्वाल थे वहां के आसपास सबको बुलवाया, श्रीकर को बैठाला, देखो इसने भगवान शंकर को प्रकट किया है, दर्शन हो गए हैं, और इसकी बात ही सबको माननी होगी। अब इसकी बुद्धि इतनी शुद्ध है, इसका कोई गलत निर्णय नहीं देगा, जो निकलेगी आवाज वो भगवान शंकर ही की। अहिल्या माता इंदौर की, काशी विश्वनाथ विश्व में जो भगवान शंकर स्थापित है, 17-18 मन का सोना का पतरा ऊपर मंदिर में चढ़ा हुआ है, उन्हीं का और रिहायश। शिव शिव शिव, बस से दूसरा कुछ। अहिल्या 450 वर्ष पहले की बात है ये, आज भी उनके द्वारा पार्थिव पूजन की व्यवस्था बना दी गई है, नर्मदा किनारे जायदाद लगा गई है, आज भी ब्राह्मण शिव का पूजन करते हैं। महिलाओं के लिए स्फटिक के शिवलिंग बहुत क्यों, भगवती लक्ष्मी नारायण की पत्नी, भगवती लक्ष्मी स्फटिक के शंकर का ही पूजन कर। ब्राह्मण पत्नियां पार्थिव शंकर बना के, अभी गंगा नहाने गए कल देखा, देवियां वही रेत में शंकर बना के पूजा कर रहे, तो कहीं भी इनको पूज लो, पेड़ा बनाती हो आटे का, उसी को थोड़ा ऊंचा उठा दो, थोड़ा लंबा कर दो, चढ़ा दो, पहुंच गए शंकर जी। अब यहां पूजन करेंगे, वहां कैसे पहुंच जाएगा? अरे भाई, मोबाइल से यहां बटन दबाते हो, वहां घंटी बजती है कि नहीं बजती तुम्हारी? बोलो, इंसान के बनाए यंत्र में ये शक्ति है, तो परमात्मा ने भी तो कुछ यंत्र फिट किए होंगे ना। तुम जहां भावना के द्वारा करोगे, जहां चाहोगे तुम्हारा किया वहां पहुंच जाएगा, संशय नहीं करना किसी पर।
हर हर
श्रीकर से हनुमान जी ने कहा, बेटा बाल्यावस्था में तुमने भोलेनाथ को प्रकट कर लिया है, जाओ तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में नंद प्रकट होंगे, और नंद की गोद में आनंद कंद भगवान कृष्ण खेलेंगे, और अंत में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
कृष्ण कन्हैया लाल की
जय।
हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, छम छम नाचे वीर हनुमान। बोलो गौतम।
बोल हनुमान जी महाराज की।
छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम जिया राम, राम राम जिया राम, राम राम जिया राम, राम राम जिया
चौथे ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर नर्मदा के पावन तट पर खंडुआ के आसपास पावन तीर्थ नर्मदा का निर्मल जल वहां वहां एक पहाड़ी है जो ओम के रूप में है, जैसे ओम लिखते हैं ऐसे ईश्वर का नाम पड़ गया ओंकारेश्वर। वहां के राजा विंध्य पर्वत, उनको अभिमान था कि मेरे पास सब कुछ है। देवर्षि नारद आए हैं, बात बात में राजा ने पूछ दिया मानधाता ने, महाराज आप देख रहे हो मेरे पास सब कुछ है ना, कोई कमी तो है नहीं। नारद जी समझ गए अभिमान है, आपका पदार्पण कहां से हुआ है? मैं सुमेर से आ रहा हूं राजन, वहां की शोभा, वहां भगवान शंकर का पूजन और देवताओं के नगर बसे हुए हैं, उसके सामने आपका तो यहां कुछ भी नहीं। उससे राजा को दुख हुआ है, मैं भगवान शंकर को यहां बुलाऊंगा, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। 6 महीने एक आसन से बैठकर उसने भगवान शंकर की आराधना की। देखो ध्यान से सुन लो, ये 3 ऋषियों का ऐसा नाम है, अगर इसको जपोगे तो शनि का आप पर कभी प्रकोप हो ही नहीं सकता। गाधी कौशिक पिप्पलाद, एक दिन ऋषियों ने मर्यादा बांध दी है 16 वर्ष की उम्र से पहले बच्चों पर शनि का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, उसके बाद की मर्यादा है। 2.5 शनि हो चाहे 7.5 हो चाहे ग्रह प्रतिकूल हो शनि, पर अगर आप इन 3 ऋषियों का नाम लेते रहेंगे गाधी कौशिक पिप्पलाद, शनि का आप पर कभी कोप नहीं हो सकता, और अगर होगा तो बर्बाद हो जाएगा। यह ऋषियों का अभिशाप है उनके लिए, इसीलिए जब कोई ज्योतिषी जी कह दें कि तुम पर 7.5 है 2.5 है तो तुम इन 3 ऋषियों का स्मरण करते रहना, तुम्हारे ऊपर कभी शनि का प्रभाव नहीं पड़े, शिव पुराण में लिखा हुआ। अच्छा, गाधी कौशिक पिप्पलाद, इनकी भी कथाएं हैं शिव पुराण में लंबी, क्यों समय कम है ना। ओंकारेश्वर भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, प्रार्थना की है, चरणों में गिरा है, ऋषि भी आ गए हैं, देवता भी आ गए हैं, उन्होंने सबने प्रार्थना भी की है कि प्रभो आप यहां निवास करें। ओंकारेश्वर पावन तट है नर्मदा का, भगवान शंकर 2 रूप में प्रकट हो गए, जैसे एक क्षण में 2 डालें होती हैं, एक ही ज्योति 2 रूप में हो गई। ओंकारेश्वर की ओर जो पूजन हो रहा था वहां तो ओंकारेश्वर बनके भगवान प्रकट हुए, और दूसरे तरफ परमेश्वर अमलेश्वर के नाम से भगवान शंकर का वहां स्थान है, आज भी है, लोग देखते हैं सुनते हैं मौज करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, दर्शन मात्र से सारे पाप ताप समाप्त।